ऐसी चिट्ठी कृपा नाम की जब लेकर के आए, स्वामी जी किस दिल से उसको पढ़े और सुने। बस जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ी, इंद्रावती का दिल रो रो के स्वामी जी रोने लगे। उसी समय मूल मिला बेटा चिंतन राजी के महाराज के चरणों में कहा कि ओ धनी अक्षरातीत हो, हमें अपनी अंगना कहते हो, ये हमको तुमने माया का रस ब्रेहा का दिया है, यही अंगना से प्यार किया है, आके अपनी अंगना को देखो, लोभती हो करे जलधार के जंगलों के अंदर रखड़े खा रही है तेरी अंगना और रो रही है, और इनका हश्र क्या हो गया, क्या हो गया। हमारे से एक गलती यही तो हो गई, हमने माया मांग ली, अब उसके बदले में हार लिखवाना चाहते हो। अच्छा धनी तुम जीते और हम धनी हारा, कितनी बार आप हमारे से हार लिखवाना चाहते, लिखवा लो, और इस तरह का सुंदरताल का दशा होवे, इससे तो अच्छा था कि परधाम में हमको एक बहुत लकड़ियों का ढेर करके देखा था, जैसे चिता जलती है माँ अपने घर में जला लेते, हमें टुकड़े टुकड़े कर देते। इस तरह से तो ओ मेरे धनी, दुनिया का एक यार होता है ना यार, वो भी दुर्दशा नहीं करता, और तुम हमारे धाम के धनी हो, और ऐसी हालत में अगर तुम बहुत ही बड़ा बनना चाहते हो और हमारे को हाथ से मनवाना चाहते हो, तो मैं तेरे डर की बेकार बन के तेरे से भीख मांगती। इतना सुंदर दान के वास्ते आप इंद्रावती के आदम स्वामी जी राजी से मिलक मिलक के कहते कि राजी महाराज, अगर तुम बहुत ही ऊंचा बन के हमें इस सजा देना चाहते हो मांगनी खेल के बदले में, तो मैं एक बेकार बन के तेरे दर से भीख मांगती हूँ। गले में कपड़ा डालती हूँ, मुख में तिनका घास कर लेती हूँ, लेकिन तुम माफ कर दो, और ऐसे हमें सुंदर साथ को जंगलों के अंदर दुखी करके वाला वो बिगड़ छे यहाँ उतरे वाणी के वालो रस रमार्ता वासना रोदन करे, और धनी तेरी वासना हो तेरी आत्मा ब्रह्मधाम की अंगना, और ऐसी रुदन करके ऐसी दुखी हो, नहीं हमसे ये सहन नहीं होता। ये छे बिगड़ उसी समय राज्य राय का हुक्म दिया, ऐसा कारज कारण बना कि तुरंत जो है सेना को औरंगजेब ने वापस बुलवाया, और ये आवेश के द्वारा 6 किलोमीटर उतरे, जो कितना भारी से भारी दुख क्यों ना हो सुंदर साथी, विधिवत इसकी भी विधि है, खाली नहीं उठे और पढ़ लिया, विधिवत इसको बांटा जाए, कोई समय नहीं लगता कि दुख आज भी सुंदर साथ के दूर होते हैं, पर जो निश्चय और विश्वास के साथ इस पक्ष को राजीव राजी अच्छा तीन बार मन की वाणी समझता है, क्योंकि लिखा है निश्चय करीने दौर सी देह और तातम न फल नेसी, एक छे बिगड़ उतरते साथ ही कृपा राम जी वापस गए, और उदयपुर में बिल्कुल शांति होगी। अब उदयपुर से चल के मंदसौर पहुंचते कैसे है, ये जरा ध्यान के साथ सुनिए। समय सब सुंदर साथ फकीरी ग्रुप के अंदर है, आप राम के द्वारा श्री नाना जी महाराज सब भाई लोग भी और जितनी माताएं बहने भाई विराज भी है, और स्वामी जी भी बड़ी फकीरी रूप कैसा है, ऐसे सिर पर तो देखोगे ऐसे लगेगा जैसे मुल्ला पीर है, रुमाल दादा हुआ है, स्वामी जी ने दो मन के वाली माता को कस रखा है, वो दूर से देखे तो क्या दिखेगा कि कोई पीर आ रहा है, फिर तिलक देखोगे तो क्या लगेगा, तो भाई कुछ ऐसा रूप फकीरी का है, इस ब्रह्मांड में कौन सी छवि कोई मिलाएगा इसके साथ है? अरे अनुपम शोभा वाला वेश है, किन शब्दों के साथ उस धाम धनी की जो है इस शोभा का जो है उपमा दी जाए,
शोभा
और ऐसी छवि और ऐसा वो सुंदर स्वरूप स्वामी जी के ऊपर पकीनी का लग रहा है। अब ऐसे स्वरूप पर संसार की क्या ऊंचियां और क्या खूबसूरतियां होंगी। कोटि के रूप भी वादे तो तुलना में नहीं आ सकते। शेर के ऊपर क्या शोभा माने, कोटा जो है वो शोभा माने ऊपर जैसा भी का मौसम है, भी कान ढापने की जो है दो पुत्र रोहित से रोया बना करके टोपी, जैसे आप लोगों ने देखा ना अपने साधु कई लोग सर्दियों में आते हैं तो ऐसी टोपी जो कानों तक होती है, ऊपर कंडपी और टोपी पहन रखी है और अति सुंदर तिलक की शोभा दे रखी है। दो रेखों का है, दो रेखा लंबी और बीच में चंदन जो है बिंदी दे रखी है। इसी समय स्वामी जी चंदन को भी चंदन का लगाते हैं। आज भी भारत वर्ष में सबसे उत्तम और बेस्ट चंदन कौन सा होता है, गोपी चंदन नाम का, ये चंदन का नाम है गोपी चंदन, और ले रखे जो है वो रेखा लगाते थे। सफेद गोपी चंदन मशहूर होता है चंदन, और वो चंदन जब सबकी रेखों वाला लिखा लगा देते हैं तो ऐसा बुखार मिलने की शोभा आती है मानो जो है पूर्णमासी का गरमा खिलाओ। और कानों में दो शरणी जो है पहन रखी है और दो बारे कंचन के जैसे गोरखनाथ के चेले पहनते कंचन के बारे में, ऐसी जो है पहले शोभा छोटी भी पहन रखी है, फिर ऊपर जो है कंचन के रखे और छवि इतनी प्यारी है। क्यों स्वामी को फकीरी पेश अच्छा लगा, क्योंकि वो मोमिनों में ये मुसलमान है, ये हिंदू है, छोटे हैं, बड़े हैं, ये भेद को मिटाने वाला जो है ये चिरक वेश है। और तुलसी की चार कंठी, कंठी और चार माला और पहन रखी है
और चार माला
और पहनी है और अति सुंदर जो है गले के अंदर वो माला सज रही है।
लोई धागे भरी
सुहार, अब जो लोई है जो ओल्ड काली कपड़ी है धागों से बनी है और गोदरी है
और गोदरी
और ओढ़ने के वास्ते जो गोदरी है जो मोमिनों ने अपने हाथ से बना रखी, शेरी है, सुवर्ण है, मुद्रा है, ये अपने अंग पर स्वामी ने पहन रखे।
ऊपर धोती
बस एक तो धोती और अंगोछा पहना हुआ है और एक ऊपर भी मैंने एक सेट ये ऊपर अपनी गोदरी में दुकाशी में बांधा हुआ है
और कमर बस
एक तो पहना हुआ है और एक कमर में बांध रखा है।
ब्रह्मांड में
किसकी अक्षरा और कारण कौन बना, ए मुकंदा जी महाराज के कारण हमारे धाम दुला को फकीरों के रूप में आना पड़ा।
ऊपर
वो तो भाई धाम के दुला है, क्योंकि जो सुंदर लोग होते हैं ना उनको श्रृंगार नहीं सजाया करता, उनको किस वस्त्र में सजाना था पर जैसा पहन लिया उसे ही श्री की शोभा हजार गुना ज्यादा जो है शोभामान है।
एक पात्र
दुबे का कमर में बंधा है, क्योंकि जो साधुजन होते दोनों तापे जो है पात्र किस लिए दुबे के रखते थे, एक जल के वास्ते एक लघु शंका जाने के वास्ते, तो जल पीने वाला अलग कमर में है और एक हाथ में और बाकी सामान जो है वो सब अपनी झोली में है और झोली कंधे पर रखी है। कांध अपने कंधे पे उठा रखी, सबको कहते हैं अपने अपनी झोली उठा लो और चंद कमरों में पनही रखी है और बड़ी लकड़ी मटनी का श्री का चला हुआ मोमनो खैर मांगा था ना और मेरे मस्तों मार्ग जरास को आज अगर इंति के मुताबिक चलते आओ पीछे पीछे और जो संग मोमिन है वो भी कितने हैं जो जंग किससे कर रहे हैं, दंडाल से दंडाल तो ने माया से युद्ध कर रहे हैं मोमिन और वो भी पति से चल रहे हैं चलते हैं अपने क्यों प्यारे के साथ खुश होकर के सबों ने भेष पहन रखा है फकीरी जैसा शिवाजी महाराज का है और उधर पहचान भी लिया है कि ये कोई फकीर नहीं है, ये तो हमारे धाम के नहीं है, जैसा उन्होंने पहना है सबों ने भी वैसा पहन रखा है।
एक अपने साहिब
अपने साहब को देख करके अब स्वामी जी कहते हैं भाई मुझे क्या कहते हैं, सबसे चालू में तो लगी और बार बार धाम में कहता था कि एक हिंदू आए रहे तुम्हें मन क्या मेर मेरा मेर तब हम मांग गया मेर 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 पति कोई बात याद करा दे ये मोमनो अब तुम दुखी हो रहे हो तुम्हारे सुख मेरे सिराम नहीं होते और मैं क्या करूं तुम्हारी क्या बात हम में ऐसी थी कि तुम सब मिल करके मेरी बात को सुना भी नहीं चाहते थे
भाई जी
बनाया। भाई भी जैसा साज का वेशन मेरी वैसा उन्होंने भी पहन रखा है
वो भी तो है निर्गुण
और निर्गुण बने हुए वो भी
फकीरी
बात बनाए रहने भाई साहब ने फकीरी बना रखा है दजाल से करे मोमिन ही मोमिन है जो ये नहीं देख अकेला इतने इतने हमारे शेष का क्या फायदा पैसे का वो भाई है उसका पति तो चोरी मानता है हजार रुपए की साड़ी पहनता है हम कैसे ना पहने ये मोमनों का क्रम नहीं मोमनों को तो केवल तन रखने को मिल रहा है संसार माया वालों को देख करके जितना इस माया के पीछे भागोगे वह रात का पेड़ा सुनाए ना कल कैसा है ये मृग कृष्ण का जल है जैसे गर्मी गरीतु में और उसके पीछे हिरण भाग भाग के जाता है लेकिन उसके हाथ पानी और उसी की चमक में मर जाता है इसी तरह से मेरे सुंदर साथी ये संसार नकल का सागर है इसका इतना इसके घर ये अरवा इसके घर रंगी दिया हमारे तत्व भी नहीं आएगा ये मृग कृष्ण चरण हिवस हवा जो इसके पीछे रखते हैं उन्होंने वह से पार किया होना है वो इसी में ही तड़प तड़प करके जैसे वो हिरण भागता तो है पानी की चाह में लेकिन गर्म रेती में तड़प तड़प के मर जाता है इसी तरह से जो इंसान दुनिया को देख करके और इस माया की हिवस में दौड़ते हैं वो इसी की अग्नि में तड़प तड़प करके मर जाते पर मोमिन जो है वो जंग करते हैं जिससे वो दुश्मन है अपनी नफ़त और हिवस के और ये प्राण कुरान में लिखा हुआ है कि जब इमाम मेहंदी दुनिया में आएंगे तो उनके मोमनों के हाथ में एक लंबी तलवार होगी कि एक भले ही जब वो मोमिन तलवार चलाएंगे तो 72,000 शत्रुओं को काफिरों को एक बार में मारेंगे आप मुसलमान इस इंतजार में जब इमाम मेहंदी आएंगे तो उनके मोमनों के हाथ में इतनी लंबी तलवार होगी और वो एक बारी में 72,000 मोमनों को अब काफिरों को मार डालेंगे अब सुंदर साजी क्या वो इमाम मेहंदी प्रार्थना कितना जालिम आएगा कि जो एक तलवार में एक एक बार में 72,000 को मारेगा वो किसी को मारने नहीं आए अब वो 72,000 काफिर कौन है ध्यान से सुनिए काफर वो होता है जो अल्लाह ताला के राह में हमारे रास्ते में रुकावट वो काफर है दजाल है अब सबसे बड़े काफर 72,000 हमारे अंदर है जो हमारी नारियल जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार और एक दूसरे की चाहना लोभ में आके कभी अरे और तो नहीं करता मैं कुछ सुनेंगे पास बैठे बैठे सुनेंगे ये साड़ी कितने की ली कौन सी मिल की अरविंद की अच्छा चार चार का विषय बोल मिला बेटा है और हम पास बैठे बैठे साड़ियों के बोल पूछ अब ये है लजाज ये है हमारे काफर जो मन में बैठे हैं मोह लगी है हिरस लगी है सामने उठती है लोभ में डूबे हैं तो मोमनों के पास एक तलवार होगी कौन सी वो सबसे पहले क्या करेंगे अपने मन के हिरस हवा चाहना खाश को राजीव राज की बारी से रोज उनको कदर करेंगे जैसे ये मोमिन कदर करके जम रहे ये जम है जो मोमनों ने करना है दुनिया सारी इसी में मर जाएगी कोई कहेगा जी अरे क्या है अरे भाई अभी तो हमारा एक बंगला ही नहीं हुआ है अरे बंगले रंगले जंगले आंख बंद होने पर कोई भी संग चलना नहीं मोमिनों को ये खबर लग चुकी है वाली में कि जितना जितना इस माया में सुंदर साजी चाहना करोगे उतना ही राजी से दूर हो ہوں گے. اس وقت کے جو ہے مومن انقلابی کے درمیان کی اپنی ہمت کو, اپنے نمبر کو, اپنی اندریوں کی چاہنا کو, اپنے ان باتوں سے دور ہوں گے. یہ ہے مومنوں سے خود سامنے آ کر کے جل کرنا ہے دجال
آرام
رستہ ایک رام پورا آتا ہے باہر مومن اور ایک حویلی بٹھالی. اب ادھر کیا ہوتا ہے, ادے پور کے راجا کا ویری سال ایک بھائی ہوتا ہے, اس کو خبر آ گئی کہ یہ جو سادھو مہاتما تھے ارے ان کے پاس بہت مال تھا, انہوں نے تو جاتے بار بڑے بڑے لوگوں کو بہت پریشانی میں موٹا موٹا سمجھ گئے, گنڈا تھا لوفر تھا, لے کے 25-50 بڑا کو سوامی جی کے پیچھے نہ وہاں کیا پڑا گاؤں میں تو پورن مل چاول وہاں کا جو ہے مکھیا تھا, اس کی ماں کو جب پتا اس نے ویری سادھو بنا کے کہا ویری سادھو ذرا جب تیرے گھر سادھو جان آئے تب تم نے لوٹا نہیں, آپ ہمارے گھر میں سادھو جن آئے اور تم کو آیا لوٹنے, وہ لے کے اٹھ کا لچ ہو گئی کھڑے اور کہنے لگے چلا جا میرے گھر سے, تو مار 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 کے جو ہے کوپی دے دی, ایسا اس کی تندری ہو گئی اور بڑا خوب غلط ہو گیا اس کا اور وہ واپس آیا. اب سوامی جی رام پورا گاؤں سے چل کے مند سور میں آتے ہیں محبت خان, ایسے محبت خان دولت خان یہ ہوتے وہاں کے مکھیا تھے اور سینا کے اور لوگ بھی آ کر کے وہ سمجھی کی چرچا کو سنتے ہیں. جب خان چرچا سننے لگے تو یہ بات وہاں کے قاضی کے پاس بھی پہنچ جاتی, جب قاضی کے پاس یہ بات پہنچتی ہے اب گھر کے ساتھ نہ بدل رہا, اب وہ قاضی محمد ابراہیم اس کا نام تھا وہ سوامی جی کے پاس آنے لگا. اب رات کو دولت خان اور محبت خان اور نور محمد یہ روز ان سے پوچھتے ہیں قاضی صاحب اب روز ہمارے سوامی جی کے پاس آتے ہو, یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے جی نہیں ہمارے مربی ہمارے پوجے ہمارے ولی رہے اور باقی جو قرآن میں لکھا ہے کہ وہ امام ہیں. اب ان کے کہنے سے اور آیتیں سنتے سننے سے ان محبت خانے اور دولت خانے ساتھ لے لیا. اب کیا ہوتا ہے جب قاضی آنے لگا, ابراہیم بہت عالم تھا پڑھا لکھا بڑے ودوان تھا قاضی, اب وہ ٹیکا جانتا تھا دو بھاشا, اردو بھی جانتا تھا فارسی بھی جانتا تھا. سوامی جی نے لال دا کو کہا لال داس اس کو کچھ پیسے کا روپے کر دوں تاکہ یہ دن روز آیا کرے, یعنی قرآن کا ٹیکا اردو میں آپ سے پاس ہو جائے گا تو تم نہ پاکستان سے مل جائیں گے اور آرام سے یہ وہ وشواس ہو جائے گا بھائی من میں بھی اپنے پرمان میں جیسے گیتا بھاگوت اور دوسرے گرنتھوں میں تب لال داس جی ان کو لوہ دے کر کے ٹیکا لکھنے لگے. اب وہ ٹیکا لکھواتا ہے اور سوامی جی بیٹھ کر کے سنتے رہتے ہیں تو سولہویں سپارے کے اندر میرے سندر صاحب جی دھیان کے ساتھ ایک بات آ گئی جس میں کیا لکھا تھا, دھیان دے کر کے سنو گے تو ابھی سمجھ آئے گی کیونکہ قرآن کی بات ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں دھیان دو. قرآن میں یہ لکھا تھا کہ جو امام مہندی کے مومن اتنے برہم سرشٹی ہوگی وہ دنیا میں جب امام مہندی اللہ تعالی کا گیان لائیں گے تو تھوڑی چرچا سن کر کے یقین لائیں گے تو اس جماعت کا نام کیا ہوگا, سنی جماعت. سمجھ لگی کہ نہیں؟ مسلمانوں میں آج دو پنتھ چلتے ہیں, ایک سنی اور ایک شیعہ. اب سنی جماعت کن کو کہا ہے؟ جو عرش عظیم کی بانی سن کر کے یقین لائے. اور مسلمانوں میں سنی لوگ ہیں جن کو محمد پر یقین ہے, اور شیعہ کون ہیں؟ جو علی کی لائن کے چلنے والے اللہ خدا کو ایک ہی مانتے, علی اور محمد اور حسین کے نام سے جھگڑا ہے, اس سے شیعہ اور سنی بنے ہوئے. اب سنی اصل کون ہے؟ جو اللہ تعالی کی وانی کو سن کر اس پر یقین لاوے, وہ جماعت ہے ان کے لیے قرآن میں کیا لکھا ہے سولہویں سپارے کے اندر کہ جو سنی جماعت ہوگی اللہ تعالیٰ کے مومن ہوں گے وہ یدی کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مایا کا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو سنے گئے بکرے بکرے آپ سمجھ لگی کہ نہیں ابھی نہیں سمجھائی آپ لوگ کون ہو قرآن کے حساب سے سنی جماعت جنہوں نے راجی کی چرچا بانی سن کر کے تاتم گیان لیا ہے سن کر کے یقین لائے ہو وہ کون ہے پرنمی کہہ لو یا سنی کہہ لو ایک ہی بات ہے وہ سنی جاہری جماعت ہے ہم لوگ بات نہیں جنہوں نے دھامدنی کو پہچانا اب اس کے بارے میں قرآن میں کیا لکھا ہے کہ جب ایسی برہم سرشٹی جنہوں نے راجیو رائے کی وانی سن کر کے اپنے دھنی کی اول خان کر لی ہے وہ یدی راجیو رائے سے مانگے گا راجیو رائے مانے بھی ٹی وی آپ کو راجی کان بند کریں گے ان کی کبھی بھی فریاد راجی مراد سنیں گے ہی نہیں تب کئی سوچ رہے ہوں گے یار پھر تو امبے جی جانا ٹھیک ہے تاکہ امبے سمجھی جو ہے جگد امبے سمجھی جو ہے بھگت جی سنتی جو ہے اچھا تو پوری کرتی ہے اور قرآن میں لکھا ہے کہ ان کی فریاد کبھی راجی مراد سویکار ہے اب اس دھیان کے ساتھ پہلے سن لو تو گھبرانا نہیں کیوں لکھا ہے دھیان دو اب ذرا اب ادھر دھیان دو تو سمجھاؤ ذرا تمہیں قاضی نے جب یہ بانجا تو کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کسی قومی نے یہ قرآن لکھا ہے غلط لکھ دیا کیونکہ اس سمے نوتم بھائی جی کا پریس چلتا نہیں تھا دیش میں چھاپا کرنا ہوتا ہی نہیں تھا سب لوگ اپنے اپنے گرنتھوں سوئیں کو قلم سے لکھتے تھے اس سمے بھارت ورش میں بھائی پریس کا کام نہیں تھا آج سے چار سال پہلے اپنے دیش میں کوئی پریس چھاپا کرنا نہیں آتا تو قرآن ہوئے چاہے بھارت ہوئے چاہے ہوئے سب گرنتھ کس سے لکھے جاتے تھے قلم سے اس لیے وہ قاضی نے کیا بولا لال دادی یہ کچھ معلوم ہوتا ہے کسی قومی نے قومی ایٹلے آن پڑھ یا جو کم بڑا لکھا ہے اس نے یہ قرآن لکھا ہے اور اس نے غلط لکھ دیا آپ سوامی جی رہے تھے سن کہہ لگے اور قاضی سادان ایک بار پھر بات ذرا کیا رہا ہے جس کو کہہ رہا ہے کہ یہ غلط لکھا ہے اب کیا لکھا ہے دوبارہ پڑھا کہ سنی جماعت جو گرنتھ سرشٹی ہوگی وہ یعنی کچھ بھی مایا کی چاہت مایا کی فریاد اکثر ادیت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی کبھی بھی فریاد کو سنے گا نہیں اب دھیان دو سام جی کہتے ہیں وہ قاری ابراہیم یہ اللہ یا اللہ کی امت دھیان دو بھی ذرا بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی بھی بھاری موٹی بات لکھی جن کو بٹھا لیجیے یہ کون بیٹھ گھوم رہی ہے تو میں پچھا نہیں گئے ارے پڑھے پڑھ لیجیے کیا بات ہے تو انہیں اگر اس کو آپ کی ان کو को कभी मांगने की जरूरत पड़ेगी नहीं तो फिर नामंजूरी होने का सवाल क्या है? क्यों भाई? ए भाई लोग, बहनों से मतलब नहीं, भाई लोग जरा उत्तर दो। सुबह नाश्ता करके रात्रि के साथ 8 बजे तक अपने अपने काम में, चाहे ऑफिस का काम है, चाहे खेती का काम है, चाहे किसी का कारखाने का कोई भी काम धंधा अपन जो करते हैं, सुबह से लेके शाम तक जो पिसते हो किसके वास्ते? बोलो, अपने परिवार के लिए या किसी और के लिए? अपनी बीवी के लिए। अगर एक माया का पति सुबह से शाम तक रखड़े खा रहा है किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। के भाई हरी पत्नी की शोभा हमारे घर की सेटलमेंट जरा स्टैंडर्ड के साथ होनी चाहिए। तो अक्षरातीत को अपनी पत्नी की चिंता नहीं होगी? लिखाया पुराने के आदमी की जितनी ताकत है वो बिना डिमांड के अपनी वाइफ की इच्छा पूरी करता है कि नहीं? तो वो अक्षरातीत जो है उसकी दुनियादारी रोज डिमांड में उतरती बेटा करेगी, उसको कभी भी मांगने की जरूरत पड़ेगी नहीं, धनी उसका सदा भंडार भर के रखेगा।
अभी रान बना दूंगा। और कहा गया खाली
लेकिन आने से पहले ही राजीव राय की क्या मेहर होती है, जरा सेना को आने दो और इतने में तुम 10 मिनट की
साथे साथे खूब दूर कई डिस्ट्रिक्ट मुख्यमंत्री पर फूलपुर भैया इलाहाबाद फूलपुर भैया इलाहाबाद अलावा मारी मारियो यार हकीकत में आप भाइयों कर गए एम नो पुरात की सम्मान कर से अपना बड़ोदा जिला में हमारे प्रेसिडेंट पूजे नरोत्तम भाई पुरात की सम्मान से बोलिए प्राण न्याय जय खंबातना लाड़ीला सेठ श्री नमन भाई साड़ी वालों ने कोई ना ओलखता हो था ना नाम से वंचित ना हो भाग्य तो सुंदर साथ हो એમના લાડીલા સુપુત્ર શ્રી ઇન્દ્રવદન ભાઈ પણ આજે આપણે અમને બધા છે એમને ફુલાથી સન્માશે આપણા અમદાવાદના મુરબી શ્રી જસુભાઈ ને
आता है तो जो देता है दाने निकाल के नहीं देता, घर में रोटी बनी होती है, चाहे किसी के बाजरे का रोटला हो, चाहे मक्के का हो, चाहे ज्वारी का हो, चाहे गेहूं का हो, जैसा को घर खाते हैं, लोग फकीर है उसको भी दे दे देते हैं। हर कोई जो है अपनी झोली में भर करके जो है टुकड़े वो ले आते हैं। अब जिस जगह स्वामी जी ने उनको बोला होता है, अब ये प्रसंग एक एक शब्द को सुनना था, कितने प्यार के साथ झोलियां भर के ले आते हैं और आकर के बैठ जाते हैं, अपनी अपनी झोली को रख देते हैं। जैसे आप लोग घरों से था लाते हैं, वो लोग झोली भर के मांग करके रखते हैं और शिव जी के चरणों में रख देते हैं। श्री राज अरोगत एक एक झोली को लेते हैं स्वामी जी और उसमें हाथ डालते हैं, हाथ डाल करके निकाल करके